दिन भर 18 जून दिन मंगलवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से जूझते मुजफ्फरपुर का हाल जानने पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, हुआ विरोध, अब तक 100 से ज्यादा मौत।
गरीबों के साथ मजाक हो रही है ना, 5 साल से क्या अवेयर कर रहे हैं।
अयोध्या में 14 साल पहले हुए चरमपंथी हमले के मामले में फैसला, 4 को उम्र कैद।
मोहम्मद अजीज को छोड़कर चारों को आजीवन कारावास की सजा हुई, लगभग 14 साल हो गए।
और ओम बिरला का लोकसभा स्पीकर बनना तय।
सबसे बड़े लोकतंत्र जो विश्व का है भारत, उसका वो अध्यक्ष बना है, इसे कोटा के अंदर काफी खुशी है।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर पहुंचे और वहां उन्होंने श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जाकर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से अब तक 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। चीन ने अमेरिका की आलोचना की है और कहा है कि वो ईरान पर अत्यधिक दबाव बना रहा है। चीन के विदेश मंत्री की ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका ने कहा है कि वो खाड़ी के क्षेत्र में 1,000 और सैनिकों को भेजेगा। हालांकि राष्ट्रपति हसन रूहानी ने फिर कहा कि ईरान किसी देश के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है कि ईरान नहीं बल्कि अमरीका बुरा बर्ताव कर रहा है। हसन रूहानी ने कहा,
ما یک تقابلی داریم با آمریکا که هیچ کس در جهان
نیست. آج ہم اور امریکہ آمنے سامنے ہیں، لیکن دنیا میں ایسا کوئی دیش نہیں ہوگا جو ایران کی پرشنسا نہ کرے۔ ہم نے سمجھوتے کو نبھایا ہے، ایران نے ہر انتراشٹریہ سندھی کا پالن کیا، اور امریکہ جو آج ہمارے سامنے کھڑا ہے اس نے ہر سندھی، ہر انتراشٹریہ سمجھوتے کو توڑا ہے۔ یہ تھے ایران کے راشٹرپتی حسن روحانی کے شبد۔ इस बीच चीन और रूस ने अमेरिका और ईरान से तनाव को खत्म करने की अपील की है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लाम ने कहा है कि उनकी सरकार विवादास्पद प्रत्यर्पण बिल की प्रक्रिया को अपने मौजूदा कार्यकाल में शायद आगे ना बढ़ाए। उन्होंने कहा कि इस बिल को अब संसद में तभी लाया जाएगा जब लोगों में इसे लेकर डर खत्म हो जाएगा। कैरी लाम ने अपने इस कदम के लिए लोगों से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने की बात से इनकार कर दिया। प्रदर्शनों के आयोजकों का कहना है कि रविवार को 20 लाख से ज्यादा लोगों ने बिल को पूरी तरह से वापस लिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही बॉनी लूंग ने कहा कि कैरी लाम अब हांगकांग का शासन चलाने के काबिल नहीं रही और उन्हें जाना ही होगा।
कैरी लाम, although she demanded Hong Kong people's second chance to trust her again,
कैरी लाम ने हांगकांग के लोगों से दूसरे मौके की मांग की है और कहा है कि वो उन पर भरोसा करें। वो चाहती हैं कि लोग उन्हें हांगकांग पर दोबारा शासन करने दें, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि फिर दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम बार बार कैरी लाम से पद छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये थे प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही बॉनी लूंग के शब्द। फेसबुक ने कहा है कि वो अगले साल एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। इस मुद्रा का नाम लिब्रा होगा। स्मार्टफोन और इंटरनेट से कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकेगा। कहा जा रहा है कि इसके जरिए लोग आसानी से पैसे की बचत कर सकेंगे और पैसा खर्च कर सकेंगे। फेसबुक के साथ उबर, मास्टर कार्ड और पेपल कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पूर्वी कांगो में हाल में हुई नस्ली हिंसा की वजह से 3 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि हेमा और लैंडू प्रजातियों समूहों के बीच हुए संघर्ष की वजह से 160 लोगों की मौत हो गई। इन दोनों समूहों के बीच जमीन और पानी के अधिकार को लेकर विवाद हुआ था। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल ने कहा है कि जब तक यूक्रेन की संप्रभुता बहाल नहीं होती, तब तक रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध जारी रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक करने के बाद एंगेला मर्कल ने कहा कि प्रतिबंध तभी हटेंगे जब रूस यूक्रेन को क्राइमिया लौटा दे। बीबीसी समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। बिहार में सवाल है और ये सवाल आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने गुस्से के तौर पर फूटा। नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के दौरे पर थे। ये जिला और इसके आसपास के इलाके में इन दिनों एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम की दहशत है। स्थानीय लोगों ने इसे चमकी बुखार का नाम दे दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बुखार की वजह से अब तक 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और कई अन्य बच्चों का इलाज हो रहा है। जिन बच्चों की मौत हुई है और जो उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल हैं, उनके परिजन का सवाल है कि आखिर सरकार की नींद खुलने में इतना वक्त क्यों लगा। सुनिए पटना से नीरज सहाय की रिपोर्ट।
100 से अधिक बच्चों की मौत के बाद और इसकी शुरुआत होने के 2 सप्ताह गुजर जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करुणा मंगलवार को जागी और वे मुजफ्फरपुर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री ने अस्पताल में पीड़ित बच्चों का हाल जाना। जन सरोकारों के लिए संवेदनशील माने जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वहां उपस्थित लोगों के भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। उधर विपक्ष सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की जमकर आलोचना कर रहा है तो लोग मुख्यमंत्री के वहां इतने दिनों के बाद जाने पर सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि
लगातार 7 साल से हरकत हो रही है। प्रायोरिटी क्या है वो सरकार डिसाइड नहीं कर पा रही है और गरीबों के प्रति ज्यादा सरकार का जो है वो अगर प्रतिबद्धता होता उपाय करती, वो उपाय नहीं कर पाई है।
इस बीच सरकार ने आज राजधानी पटना में पीड़ितों को एम्बुलेंस सेवा के लिए 400 रुपये मुहैया कराने, पटना और दरभंगा से अतिरिक्त चिकित्सक भेजने आदि निर्देश जारी किए। हालांकि राजद के विधायक शक्ति सिंह यादव इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वे इस पूरी घटना को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित अपराध बताते हैं। उनके अनुसार
जो को गरीबों के साथ अच्छी मजाक हो रही है ना, अगर 5 साल से क्या अवेयर कर रहे हैं, बीच पर काम किसी क्या हुआ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपने क्या काम किया, ऊपर अपर लेवल पर आपने क्या काम किया, 40% चुप रहे।
पिछले साल इसी शहर में शेल्टर होम जैसी शर्मनाक घटना के बाद इस वर्ष हर दिन तिल तिल कर मरते बच्चों की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है और सत्ता पक्ष कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहा है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजू गीता दावा करती हैं कि नीतीश सरकार से अधिक संवेदनशील देश की कोई सरकार नहीं हो सकती।
और वहाँ पूरे तीन पर लगी ही हुई है, पर वो पूरा मॉनिटरिंग ही करी जा रही है।
अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद हालात में कितने सुधार होते हैं और सरकार तात्कालिक के साथ साथ कौन कौन से दूरगामी उपाय करती है जिससे अगले वर्ष फिर से इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
मुख्यमंत्री के दौरे के वक्त कोशिश ये रही कि आम लोग या पत्रकार उनके पास न पहुंच सके। उधर जमीन पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे आज मुजफ्फरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रही थी। मैंने कुछ वक्त पहले प्रियंका दुबे से बात की।
इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के मीनापुर ब्लॉक के राजापुरनाश गांव में हूँ। इस गांव में बीती रात 2 बच्चों की मौत हुई है। हम यहाँ आए, उनके परिवारों से भी मिले और यहाँ आम लोगों से भी मिले। यहाँ पर हालत बहुत खराब है। जो जनरल सामान्य हालत है लोगों के जीने की, जो उनका जीने का स्तर है, शिक्षा का स्तर है, जैसे कि उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी यहाँ पर एक तरीके से फंक्शन ही नहीं करती है। लोगों ने बताया कि बच्चों को बुलाने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनको मील्स देने के लिए कभी भी आशा और ANM उनके घर नहीं आई है। किसी ने उनको आकर इन्फॉर्म नहीं किया, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एक अहम हिस्सा है इन्फॉर्म करना गांव वालों को। उन्होंने आकर इन्फॉर्म नहीं किया आशा और ANM ने आकर यहां पर कि आप अपने बच्चों को लीची के ऑर्चर्ड में जाने से रोकें, उन्हें धूप में ना निकलने दें और रात में जरूर खाना खिलाकर सोएं। ये जो हिदायतें हैं यहां पर बिल्कुल नहीं दी गई। स्वास्थ्य का जो पूरा यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक तरीके से चरमराया हुआ है। यहां का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो पिछले 15 साल से खुला ही नहीं है, उस पर ताला पड़ा हुआ है। जबकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये कहता है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो वो एक जो बीमार बच्चा है उसके पहुंचने की पहली ही जगह है, और सबसे पहले ये जरूरी है कि वहाँ पर हर वक्त एक डॉक्टर मौजूद हो और ग्लूकोमीटर हो, जिससे कि ग्लूकोमीटर से तुरंत बच्चे का ग्लूकोज का लेवल नापा जाए, और अगर वो उसमें ग्लूकोज कम है तो तुरंत उसे ड्रिप लगा के दी जाए। लेकिन जब अस्पताल बंद है तो लोग मजबूर हैं अपने बीमार बच्चों को सीधे ट्रैवल करने के लिए और मुजफ्फरपुर जिला अस्पताल ले जाने के लिए।
जी कितनी दूर है ये जिला अस्पताल, और जब ये प्राइमरी सेंटर बंद रहता है तो लोगों को इलाज कैसे मिल रहा है वहाँ?
यहाँ से जो जिला अस्पताल है वो एक घंटे की यात्रा है, तकरीबन 40 से ऊपर किलोमीटर का डिस्टेंस है जो लोग ट्रैवल करते हैं। बस से जब ट्रैवल करते हैं या फिर जब अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो वो वक्त और ज्यादा बढ़ जाता है। लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो किराए पर गाड़ियां लेकर और बसों और टेम्पुओं से अस्पताल पहुंच रहे हैं। सीधे एक्सेस नहीं होने की वजह से जब तक बच्चे मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं उनकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जो कि एक तरीके से मतलब इरिवर्सिबल डैमेज जिसे कहते हैं वो हो जाता है।
जी जो जमीन पर आप स्थिति देख रहे हैं और बयां कर रहे हैं, इसे लेकर वहाँ के लोगों का क्या कहना है, वो खुद क्या कहते हैं?
लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, सरकार को लेकर बहुत गुस्सा है। जो दुख की पराकाष्ठा है उसे मैं यहाँ देख रही हूँ। हर यहाँ की जो माँ है वो मुझे दुख की कैसी तस्वीर नजर आती है, जो बिना कहे आप उसकी पूरी भावनाएं समझ सकते हैं उसको देखकर। यहाँ पर मुझे लोगों ने बताया कि नीतीश कुमार ने हर विक्टिम को 4 लाख रुपए देने की घोषणा करी है, और माँ बाप जिनके बच्चे जा चुके हैं इंसेफ्लाइटिस की वजह से, उनका कहना है कि 4 लाख रुपए उनके बच्चे वापस नहीं ला सकते। और वो इस बात से भी नाराज हैं कि जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ तक आने में इतनी देर लगा दी।
ये थी बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे। इस बीच एक और आंकड़ा सामने आया है, मुजफ्फरपुर में बुखार की वजह से जिन 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई उनमें से सिर्फ एक बच्चे का इलाज केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत हुआ। केंद्र सरकार इस योजना को लेकर लगातार कई दावे करती है, लेकिन जमीन पर इसका कितना असर है ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डिप्टी CEO दिनेश अरोड़ा से बात की।
मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे आयुष्मान भारत में मेडिकल पैकेजेस हैं, और उन्हीं मेडिकल पैकेजेस के अंतर्गत दो मेन पैकेजेस हैं जिनका नाम है एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम एंड वायरल एनकेफेलाइटिस। दोनों मेडिकल पैकेजेस हैं, ये दोनों कवर्ड हैं। कोई भी अगर एलिजिबल बेनिफिशियरी जो हॉस्पिटल्स में आते हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं या सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, तो दे कैन अवेल द ट्रीटमेंट।
इसके तहत क्या क्या कवर्ड आता है?
एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट फ्रॉम एडमिशन से लेकर उनकी ट्रीटमेंट, कंसल्टेंसी, कंज्यूमेबल्स, मेडिसिन, कोई भी इंटरवेंशन, डायग्नोस्टिक, ऑल आर कवर्ड।
बिहार की अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर इलाके की, वहाँ पे कितने सरकारी अस्पताल और कितने प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत के तहत आते हैं?
देखिए, अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अंदर तकरीबन 32 केसेस इंसेफ्लाइटिस के आ चुके हैं और जिनका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। दुर्भाग्यवश उनमें से एक की डेथ हो चुकी है और 31 का ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है।
ये सिर्फ आप SKMCH और केजरीवाल हॉस्पिटल मिला के दे रहे हैं या टोटल मुजफ्फरपुर का है?
मैं टोटल आयुष्मान भारत की पेशेंट की बात कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर में। कोई भी बेनिफिशियरी आया, हमें कोई शिकायत नहीं आई है कि किसी बेनिफिशियरी को डिनाई किया गया हो ट्रीटमेंट। SKMCH हमारा एक एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है जहां ट्रीटमेंट चल रही है।
अगर ये आपका एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है और इसमें एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम से मरने वालों की संख्या 100 पार बताई जा रही है, तो फिर क्या वजह है कि 32 मामले ही आए हैं जिसमें एक की डेथ आप बता रहे हैं? तो ये सारे के सारे 108
है, बाकी लोग एलिजिबल ना हो स्कीम के लिए। जो हमारे स्कीम में एलिजिबल हैं और जो आए हैं आशुपत्री में, उन सबको इलाज मिल रहा है।
सर, लेकिन वही तो जानना चाह रही हूँ कि क्यों नहीं एलिजिबल होंगे उसमें, क्योंकि वो जो इलाका है सरकारी अस्पतालों में, आपको भी पता है कि गरीब तबके के लोग ही जाते हैं। जो हमने वहाँ से रिपोर्टिंग की है उसमें मैक्सिमम लोग उसी बेंचमार्क में आते हैं, तो उसके बावजूद क्या उन लोगों के कार्ड्स नहीं बने या उन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंची हैं?
मैं अभी आपको डेटा देता हूँ निकाल के मुजफ्फरपुर का। 28 हॉस्पिटल्स हैं मुजफ्फरपुर में जो एम्पैनल्ड हैं हमारी स्कीम में, उसमें से पब्लिक हैं 18 और प्राइवेट हैं 10।
तो ये जानना चाहती हूँ कि SKMCH से कितने लोगों ने आयुष्मान का लिया है बेनिफिट इस एक्यूट एनसेफेलाइटिस के लिए, क्या ये आंकड़े मौजूद हैं?
2,711 केसेस हो चुके हैं अभी तक SKMCH में अंदर आयुष्मान भारत टोटल, तो तकरीबन कोई 7 महीने में, लास्ट 15 दिन में तकरीबन 200 केसेस जोड़े, 32 केसेस हमने ट्रीट किए हैं मुजफ्फरपुर में। तो तकरीबन खर्चा उनका मिला के 5 लाख आया पूरी ट्रीटमेंट।
ये थे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डिप्टी CEO दिनेश अरोड़ा। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। प्रयागराज में एक विशेष अदालत ने 14 साल पहले अयोध्या में हुए चरमपंथी हमले के मामले में आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने 4 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 1 को बरी कर दिया। समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
अयोध्या में अधिग्रहित परिसर में 5 जुलाई 2005 को हुए हमले की साजिश रचने के आरोप में प्रयागराज की विशेष अदालत ने 4 लोगों को दोषी करार दिया और सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन सब पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि इस लंबी कार्यवाही में कुल 63 गवाहों के बयान और साक्ष्य दर्ज किए गए।
मोहम्मद अजीज को छोड़कर चारों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। 57 गवाह अभियोजन ने प्रस्तुत किया है, 6 गवाह जो है माननीय न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। 63 गवाहों में 14 पुलिस अधिकारी हैं जो कि उनकी भी साक्ष्य हुई है और 6 भी बेचे, कुल 63 गवाह प्रस्तुत किए गए हैं। लगभग 14 साल हो गए, 371 डेट्स आज की तारीख तक लग चुकी हैं इस केस में। जो चार्ज बना था वो इसमें 5 आतंकवादी जो मौके में मारे गए थे उनमें से एक की शिनाख्त हुई थी, उसका नाम था अरशद। अरशद ही मेन जो है टेररिस्ट था, उसकी पहचान डॉक्टर इरफान शायर अली और अलीम नाई इन्होंने शिनाख्त की थी अरशद की।
फैसले को देखते हुए अयोध्या में हाई अलर्ट जारी किया गया था। स्थानीय पुलिस के अलावा आरएएफ और पीएसी की अतिरिक्त कंपनियां भी यहां तैनात की गई थीं। 5 जुलाई 2005 की सुबह करीब 9:15 बजे अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर की बैरिकेडिंग के पास चरमपंथियों ने फायरिंग की थी और बम धमाका किया था। हमले में सुरक्षा बल के कई जवान जख्मी हो गए थे। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 5 हमलावर भी मारे गए थे। इस हमले में 2 आम नागरिकों की भी मौत हुई थी। घटना के बाद हमला करने वालों की मदद के आरोप में पकड़े गए सहारनपुर के डॉक्टर इरफान, जम्मू के आसिफ इकबाल उर्फ फारूक और शकील अहमद, जम्मू के ही पुंछ इलाके के रहने वाले मोहम्मद नसीम और मोहम्मद अजीज फिलहाल नैनी की सेंट्रल जेल में बंद हैं। जिला जज फैजाबाद की अदालत ने 19 अक्टूबर 2006 को इन 5 के खिलाफ आरोप तय किया था। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर सभी को नैनी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। विशेष अदालत ने फैसला भी नैनी सेंट्रल जेल के भीतर सुनाया। मोहम्मद अजीज को विशेष अदालत ने साक्ष्य न मिलने के कारण बाइज्जत बरी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि बरी किए गए अभियुक्त के संदर्भ में विधिक परीक्षण कराकर राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करेगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
उधर भारत प्रशासित कश्मीर में बीते एक हफ्ते के दौरान हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। इनमें 4 चरमपंथियों और 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है। सेना ने आज दावा किया कि एक मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 चरमपंथी मारे गए हैं। सेना के मुताबिक ये दोनों फरवरी में CRPF के काफिले पर हुए हमले में शामिल थे। श्रीनगर से BBC संवाददाता रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
ताज़ा मुठभेड़ आज सवेरे अनंतनाग जिले के मरहमा गांव में हुई, जहां एक सैनिक और 2 चरमपंथी सज्जाद मकबूल और तौसीफ अहमद मारे गए। सज्जाद और तौसीफ का संबंध जैश मोहम्मद गुट के साथ बताया गया और सेना ने दावा किया कि इस साल फरवरी में हुए आत्मघाती हमले की योजना सज्जाद और तौसीफ ने ही बनाई थी और इसमें सज्जाद ने अपनी गाड़ी का प्रयोग किया था। कल शाम पुलवामा के आरीहल गांव में वैसे ही अंदाज में सड़क पर पार्क की हुई एक गाड़ी में रखा बारूद उस वक्त फट गया जब वहां से फौज की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी गुजरी। इसमें 10 से अधिक सैनिक घायल हो गए, जिनमें से 2 की आज सवेरे अस्पताल में मौत हो गई। कल ही अनंतनाग के बेडोरा गांव में तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें सैन्य अफसर मारा गया जबकि 2 सैनिक घायल हो गए। इससे पहले 12 जून को भी अनंतनाग में चरमपंथियों ने फोर्सेज पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें CRPF के 3 जवान घायल हो गए। क्रॉस फायरिंग में पुलिस का एक अफसर और एक चरमपंथी भी मारे गए। आरीहल में बारूदी हमला ऐसे समय हुआ जब भारतीय मीडिया में यह खबर गश्त कर रही है कि किर्गिजिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्षता सम्मेलन से पहले ही पाकिस्तान ने हमलों की संभावना के बारे में खुफिया जानकारी भारत को दी थी। लेकिन इन खबरों के उपरांत ही कश्मीर में हिंसा का स्तर अचानक से बढ़ गया और पिछले 4 वर्ष में यह पहली बार है जब मुठभेड़ों और हमलों में भारतीय फोर्सेज को भी जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सेना और पुलिस के अधिकारी पाकिस्तान की तरफ से खुफिया जानकारी शेयर करने की रिपोर्ट्स पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, परंतु सूत्रों ने बताया कि जिस खुफिया जानकारी की बात मीडिया रिपोर्ट्स में की गई थी, इसमें कहा गया था कि कार बम हमला हो सकता है। गौरतलब है कि इस वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साझे ऑपरेशनों में 120 से अधिक चरमपंथी मारे गए। पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह का कहना है कि युवाओं में घरों से भागकर हथियार उठाने के चलन में 70% गिरावट रिकॉर्ड की गई है। मिस्टर सिंह ने बताया कि अब भी घाटी में 250 से ज्यादा चरमपंथी मौजूद हैं। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कोटा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला का लोकसभा स्पीकर बनना तय माना जा रहा है। कोटा में बिरला के समर्थक उत्साह में हैं, लेकिन कई लोगों को BJP के इस फैसले से हैरानी भी हुई है। सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
कोई अभिभूत है तो कोई हैरान है। सांसद के रूप में बिरला को कोई लंबा तजुर्बा नहीं है। वे दूसरी बार कोटा से जीतकर संसद पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी में कार्यकर्ता कहते हैं कि यह छोटी शुरुआत की बड़ी परिणति है, क्योंकि बिरला कोटा में स्कूली संसद के अध्यक्ष रहे और फिर अपने सियासी सफर को इस ऊंचाई तक ले गए। वे 3 बार कोटा से विधायक रहे हैं, उन्हें संसदीय सचिव का अनुभव है। कोटा से बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने बीबीसी से बातचीत में कहा, बिरला कभी अपनी आलोचना से विचलित नहीं होते हैं। पार्टी में बिरला के साथ काम करते रहे कोटा के प्रेम कुमार सिंह कहते हैं, कोटा में अभी जश्न का माहौल है।
कोटा में उनके जैसे समाचार मिला कार्यकर्ताओं में, आम जनता के अंदर बड़े खुशी का माहौल है कि हमारा जनप्रतिनिधि लोकसभा का अध्यक्ष बना है, स्पीकर बना है और सबसे बड़े लोकतंत्र जो विश्व का है भारत उसका वो अध्यक्ष बना है। इसलिए कोटा के अंदर काफी
सांसद बिरला का नाम उन नेताओं में शुमार किया जाता है जो बहुत सावधानी से चाल चलते हैं। पार्टी में बिरला को बूथ प्रबंधन और चुनाव क्षेत्र पर पकड़ रखने वाले नेताओं में गिना जाता है। कोटा में बीजेपी पार्षद गोपाल मंडा लंबे अरसे से बिरला के साथ काम करते रहे हैं, वे उनकी खूबियां बयान करते हैं।
मैंने देखा कि एक तो गरीब को जब ये देखते हैं तो इनका दिल पसीज जाता है और उसकी सेवा करने के लिए ये तत्पर रहते हैं और उसी सेवा करते हैं। जैसे विशेष तौर से इन्होंने गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता उनको खाना खिलाने के लिए प्रसादन चालू किया, दोनों टाइम का खाना बनता था वहाँ। उसके बाद में इन्होंने चप्पल जूते जिनके पाँव में नहीं होते हैं उन गर्मियों में देखते थे तो वो उनको चप्पल पहनाने चले जाते थे कहीं भी। वस्त्रागार चालू किया जिनके कपड़े नहीं है वहाँ दर्जी बैठा के रखे और उनको ऐसी दया आई कि ये बिना कपड़ों के तो उनके लिए वस्त्रागार चालू किया और उसमें कपड़े रहते हैं और दर्जी रहता है वो सिला के और उसको बिल्कुल फिट कपड़े पहना के रवाना करता है। विकलांग है विकलांगों के लिए हमेशा साइकिलें दिलाना। इसके अलावा विकास कार्यों में आम जनता से हमेशा जुड़े रहते हैं विशेष तौर सुख और दुख में।
हाल के चुनाव में बिरला को पार्टी के भीतर विरोध का सामना करना पड़ा था। पार्टी में उनके विरोधी कहते हैं बिरला अवसर हथियाने में निपुण है और उन्हें बड़े नेताओं से रिश्ते बनाना आता है। आलोचक कहते हैं कि उनके भीतर का भाव कभी चेहरे पर नहीं आ पाता। पार्टी में उनके प्रबल समर्थक हैं तो मुखर विरोधी भी। संसद लोकतंत्र की रोशन मीनार है, इसमें गणेश वासुदेव मावलंकर और सोमनाथ चटर्जी जैसे स्पीकर रहे हैं। वक्त गवाही देगा और इतिहास मूल्यांकन करेगा कि नए स्पीकर उस परंपरा को किस मकाम तक ले जा सकेंगे। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों ने कल अपनी हड़ताल खत्म कर दी। इस फैसले पर पहुंचने के पहले डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। उनकी बातचीत का टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया था, इसे लेकर मुख्यमंत्री चर्चा में हैं। इस मामले के सुलझने से ममता बनर्जी को क्या हासिल हुआ, सुनिए बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
सोमवार को पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हफ्ते भर से जारी हड़ताल खत्म होने पर प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरह की आ रही हैं। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, दीदी ने साबित कर दिया है कि वो एक बड़ी लीडर है। ममता बनर्जी बैकफुट से अब फ्रंट फुट पर आ गई हैं, वगैरह वगैरह। राज्य की मीडिया और सियासी विश्लेषक इसका सेहरा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दे रहे हैं। डॉक्टरों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री से राज्य सचिवालय में मुलाकात की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। इस बैठक की सबसे अनोखी बात यह थी कि इसका प्रसारण लाइव टीवी पर दिखाया गया। दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार गौतम घोष कहते हैं ऐसा केवल फिल्मों में होता है।
मेरा तो मानना है पॉलिटिकली ये भी ममता जी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसके लिए पहले सब ने सोचा था, हम लोग भी मीडिया भी सोच रहे थे शायद ममता बनर्जी एग्री नहीं करेंगे कि लाइव कवरेज के बाद, लेकिन उन्होंने वो भी मान ली तो सारे जनता के सारे देश उसका लाइव देख रहे थे। ये तो हम फिल्मों में कहानी देखा था सुना था कि ऐसे होते हैं।
कोलकाता के वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक के अनुसार स्वतंत्र भारत में इसकी मिसाल नहीं मिलती।
कि लाइव टेलीविजन पर बातचीत करने पर वो मान गए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया कि ये जो उनकी एक छवि की वो किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। कल हमने दूसरा ममता बनर्जी देखा जो कि बोलने को नहीं सुनने को तैयार थे।
पिछले सप्ताह एक मरीज के परिजनों द्वारा एक डॉक्टर की पिटाई के बाद राज्य के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। बाद में उनके पक्ष में देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर इसे सियासी रंग देने का इल्जाम लगाया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता مختار عباس نقوی نے کہا تھا،
نہ تو وہاں پہ ڈاکٹر سرکشت دکھ رہے ہیں، نہ ماسٹر سرکشت دکھ رہے ہیں، نہ تو لوگ سرکشت دکھ رہے ہیں، نہ راجنیتک اور ساماجک کارکرتا سرکشت دکھ رہے ہیں، کیول وہاں سرکشت ہے ترمول کانگریس کے گنڈے۔
اس بار عام چناؤ کے نتیجے آنے کے بعد سے ممتا بینرجی دباؤ میں تھیں۔ ان کی پارٹی ترنمول کانگریس کو 22 سیٹیں ملی تھیں جبکہ بی جے پی کو 18، جو 2014 میں ہوئے عام چناؤ کی تلنا میں 16 سیٹیں زیادہ تھیں۔ اسے ممتا بینرجی کی گھٹتی ساکھ کا نتیجہ سمجھا گیا۔ پچھلے ہفتے ڈاکٹر کی پٹائی کے بعد ڈاکٹروں کی شکایت سننے کے بجائے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے غصہ دکھایا، جس سے وپکش کو ان کی آلوچنا کرنے کا موقع ملا۔ گوتم گھوش کہتے ہیں کہ ممتا بینرجی کی سب سے بڑی کمزوری ان کا غصہ کرنا ہے۔ سبیر بھومک کے مطابق ممتا بینرجی نے لائیو ٹی وی پر ہڑتالی ڈاکٹروں سے بات چیت کر کے دوسرے نیتاؤں پر دباؤ بنا دیا ہے۔
ہمارے دیش کے بڑے بڑے نیتا ہیں جو پریس کانفرنس کرنے سے ڈرتے ہیں، ہم پریس کانفرنس تو کرتے ہی ہیں جی، ہم نیگوشیشن بھی لائیو ٹیلی ویژن کے سامنے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے چھپانے کا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک میسج دلی کے لیے بھی گیا ہے کہ پردھان منتری جی پریس کانفرنس کرنے سے گھبراتے ہیں، کوئی عام سوال لینے سے گھبراتے ہیں، فٹ کر کے انٹرویو کرواتے ہیں اکشے کمار جیسے لوگوں سے۔
سوموار کی بیٹھک کے بعد پشچم بنگال کے ڈاکٹروں کو فی الحال راحت ملی ہے، لیکن اصل میں ممتا بینرجی کو اس سے ادھک راحت ملی ہے۔ اور جیسا کہ گوتم گھوش کہتے ہیں، ممتا بینرجی کو جو کٹگھرے پر کھڑا کیا گیا تھا اس سے وہ باہر نکل چکی ہیں۔ زبیر احمد، بی بی سی، دلی۔
اور اب ایک انتراشٹری خبر۔ چین نے امریکہ پر آروپ لگایا ہے کہ وہ ایران کے خلاف دباؤ کا استعمال کر رہا ہے اور اس کی آلوچنا کی ہے۔ چین کے ودیش منتری وانگ یی نے کہا ہے کہ امریکہ کی نیتی کی وجہ سے مدھیہ پورو میں آفت کا پٹارا کھل سکتا ہے۔ امریکہ نے حال میں ایران پر عمان کی کھاڑی میں 2 تیل ٹینکروں پر حملہ کرنے کا آروپ لگایا تھا۔ ایران نے ان آروپوں سے انکار کیا ہے۔ امریکہ نے مدھیہ پورو میں 1000 سینک بڑھانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اسے لے کر چین کے ودیش منتری نے کہا، چین کے ودیش منتری کہہ رہے تھے کہ چین یقیناً بہت چنتت ہے، ہم سبھی پکشوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کھاڑی چھیتر میں بنے تناؤ کو کم کرنے میں مدد کریں، ٹکراؤ کی دشا میں بڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ تھے چین کے ودیش منتری کے شبد۔ امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ پرمانو سمجھوتے سے باہر آنے کے بعد امریکہ نے ایران پر کئی آرتھک پرتیبندھ لگائے ہیں۔ اور اب کھیل کی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سوریانشی پانڈے۔ جی سوریانشی
نمسکار۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ ابھی ایک وکٹ گرا ہے گلبدین نئیب کا، اور یہ دوسرا وکٹ ہے افغانستان کا۔ افغانستان ابھی بلے بازی کر رہی ہے اور گیند بازی کر رہی ہے انگلینڈ کی ٹیم، اور جوفرا آرچر نے پہلا وکٹ لیا تھا تو وہی دوسرا وکٹ جو ہے وہ وڈ مارک نے لیا ہے۔
جی شروتاؤں کو آپ انگلینڈ کی بلے بازی کے بارے میں بھی ضرور بتانا چاہیں گی، جس نے آج ایک نیا کیرتیمان سا بنا دیا اس ورلڈ کپ کے لیے۔
ہاں کیرتیمان تو یہ ہے واتسل جی، جیسا کہ ہم بات چیت کر ہی رہے تھے کہ 398 کا جو اسکور ہے، 358 کا جو اسکور ہے،
یہ
98 کھما جاؤں گے 398 کا جو اسکور ہے وہ اب تک کا سب سے بڑا اسکور ہے ابھی تک کے جتنے بھی مقابلے ہوئے ہیں وشو کپ میں۔ اس سے پہلے 386 یعنی کہ 386 کا اسکور جو بنایا تھا وہ
397 کا اسکور ہے، 398 کا ٹارگیٹ ہے افغانستان کے سامنے جی، اور اس ساخ سے میچ کرتا ہوا ہے جو انگلینڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے میزبان انگلینڈ کے لیے۔
ہاں آگے اگر بڑھے تو میں آپ کو بتاؤں یہاں پر ریکارڈز کی بارش بھی ہوئی ہے، اور ریکارڈ کی بارش سب سے پہلے یہ ہوئی ہے کہ یہ انگلینڈ کی ایسی ٹیم ہے جس نے او ڈی آئی میں سب سے زیادہ سکسز بنانے کا ریکارڈ آج توڑا ہے، ساتھ ہی ساتھ 17 چھکے مارے ہیں مورگن نے، جو کہ اب تک کا ہائیسٹ ریکارڈ ہے کسی بھی ایک بلے باز کے ذریعے،
اور پیسہ وصول بلے باز
بالکل۔ لیکن راشد خان کے لیے ایک بری خبر ہے، 110 رن پہ انہوں نے 9 اوور میں 110 رن دیے، جو اب تک کی سب سے بری اکانومی ریٹ ہے،
سب سے بڑے ہیرو تھے۔ بہت شکریہ سوریانشی پانڈے اس اپ ڈیٹ کے لیے۔ اور اب چلتے چلتے مکھیہ سماچار گرپریت سینی سے۔
بی بی سی سماچار۔ بہار کے مکھیہ منتری نتیش کمار آج مظفرپور پہنچے اور وہاں انہوں نے شری کرشنا میڈیکل کالج و اسپتال جا کر ایکیوٹ انسیفلائٹس سنڈروم سے پیڑت بچوں اور ان کے پریجنوں سے ملاقات کی۔ اس دوران مکھیہ منتری کو لوگوں کے ویرودھ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ چین نے امریکہ کی آلوچنا کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ایران پر اتیادھک دباؤ بنا رہا ہے۔ چین کے ودیش منتری کی یہ چیتاونی ایسے وقت میں آئی ہے جب امریکہ نے کہا ہے کہ وہ کھاڑی کے کھیتر میں 1000 اور سینکوں کو بھیجے گا۔ हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लाम ने कहा है कि उनकी सरकार विवादास्पद प्रत्यर्पण बिल की प्रक्रिया को अपने मौजूदा कार्यकाल में शायद आगे ना बढ़ाए। उन्होंने कहा कि इस बिल को अब संसद में तभी लाया जाएगा जब लोगों में इसे लेकर डर खत्म हो जाएगा। बीबीसी समाचार।
दिनभर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी राजेश चौहान के हाथ। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।